नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत 165 भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकाला। शराब ठेकेदार शांतनु कत्ल मामले में वांछित शूटर रोमिल वोहरा हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़कर 906 हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोडवेज को घाटे से निकालने के लिए विभिन्न नवाचार और व्यावसायिक संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया।
आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों को जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था।
जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया। जन जन के दिल में आक्रोश, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था तो उसका कुछ छीन लिया गया।
इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने इजराइल से 165 भारतीय नागरिकों को निकाला। ये विमान आज सवेरे अम्मान से नई दिल्ली पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने इन लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों को निकालना है। आज सुबह दिल्ली हरियाणा सीमा पर इनामी वांछित अपराधी रोमिल वोहरा हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ के साथ मुकाबले में मारा गया। रोमिल की पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश सफल नहीं हुई। इस मुकाबले में हरियाणा पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर प्रवीण और रोहन भी घायल हुए हैं। हरियाणा एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण और कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र में पत्रकार वार्ता में बताया कि रोमिल वोहरा शराब ठेकेदार शांतनु कत्ल मामले का मुख्य शूटर था। एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने पुलिस मुकाबले की जानकारी देते हुए बताया,
हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल वोहरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है। तो हमारे द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे वहां पे एसटीएफ द्वारा ज्वाइंट नाकाबंदी की गई और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल वोहरा उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायरआर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजम सब इंस्पेक्टर प्रवीण को फायरआर्म इंजरी आई है।
उन्होंने बताया कि रोमिल वोहरा कुख्यात अपराधी था और कई मामलों में वांछित था।
रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शांतनु कत्ल मामले में 10 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनको अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़कर 906 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 902 दर्ज किया गया था। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने निर्देश पर हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए राज्य टास्क फोर्स एसटीएफ की साप्ताहिक बैठक में ये जानकारी दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर चर्चा हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही अधिकारियों को कहा कि यदि कोई डॉक्टर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में खासकर चरखी दादरी जिले में अल्ट्रासाउंड और एमटीपी केंद्रों पर छापेमारी तेज करने और नवजात बच्चों का पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश भी दिए। टास्क फोर्स द्वारा लिंगानुपात निगरानी से संबंधित कर्तव्यों में लगातार गैर प्रदर्शन के लिए चरखी दादरी के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजविंदर मलिक को चार्जशीट करने का फैसला किया गया। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेली के कामकाज, खासकर जहां गर्भपात की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी करने को कहा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोडवेज में राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने हेतु अधिकारियों को विभिन्न नवाचारों और व्यवसायिक संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए अन्य विकल्पों जैसे बसों पर विज्ञापन, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन या निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली के तहत बस अड्डों की स्थापना इत्यादि संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया है। इसके अलावा पर्यटन केंद्रों के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने के विकल्प तलाशने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए एसी बसों और उनके रूट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज पंचकुला में मन की बात पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा और कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने शिरकत की। इस कार्यशाला में मन की बात की प्रदेश टोली, लोकसभा संयोजक, जिला संयोजक, सह संयोजक, मंडल संयोजक और प्रदेश आईटी टोली और जिला आईटी प्रमुख भी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बताया,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात प्रत्येक महीने के आखिरी इतवार को सुबह 11 बजे जो प्रधानमंत्री जी सबसे बात करते हैं और वो प्रत्येक बूथ पर सुनी जाए, उसकी कार्यशाला आज पंचकुला पंचकमल कार्यालय में हुई है।
उन्होंने कहा कि इस बार 100% बूथों पर मन की बात के 123वें संस्करण को सुना जाएगा। इसी के बारे में चर्चा हुई है और योजना तैयार की गई है। आज पुलिस मुकाबले में मारे गए रोमिल वोहरा बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा,
हरियाणा प्रदेश में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सख्त आदेश किए कि या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे और उस पर सख्त कार्रवाई हुई है।
कार्यशाला से पूर्व पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पौधारोपण भी किया। भिवानी जिले में नंदगांव निवासी 53 वर्षीय साइक्लिस्ट नरेंद्र यादव ने नंदगांव से अमरनाथ तक 2200 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। उन्होंने इस यात्रा को 23 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वे यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण का संदेश देंगे। उन्होंने कहा,
मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बटोर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाएं।
नरेंद्र यादव पिछले 9 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में सभी राज्यों में एकता, भाईचारे और पर्यावरण का संदेश देने के लिए 18,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत 165 भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकाला। शराब ठेकेदार शांतनु कत्ल मामले में वांछित शूटर रोमिल वोहरा हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़कर 906 हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोडवेज को घाटे से निकालने के लिए विभिन्न नवाचार और व्यावसायिक संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।